नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नई दिल्ली में जारी जल महोत्सव 2026 के हिस्से के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्र से जल के साथ एक अमूल्य खजाने की तरह व्यवहार करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने जल को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किए जाने की बात कही। उन्होंने सुरक्षित भविष्य के लिए जल संरक्षण को न सिर्फ एक अभ्यास बल्कि जीवन की एक शैली बनाने का आह्वान भी किया।
हमें जल को केवल उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि जल है तो कल है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण को अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि 8 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किए जा रहे जल महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के ग्रामीण युवाओं व महिलाओं को जल आपूर्ति प्रणाली के रखरखाव और परिचालन में सक्रिय साझेदार बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पहल न सिर्फ जल संरक्षण में योगदान दे रही है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है।
ग्रुप्स को जल परीक्षण और संचालन तथा अन्य रखरखाव के कार्यों में भागीदारी बनाया जा रहा है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की प्रतिबद्धता और लगन से महिलाओं के जीवन में और समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।
प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में आज से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने रोबोटिक तकनीक से की जा रही गॉल ब्लैडर की सर्जरी को भी देखा और डॉक्टरों से इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वार्ड में रोबोटिक सर्जरी के लिए 30,000 रूपये खर्च होंगे जबकि स्पेशल वार्ड लेने वाले मरीजों को इसके लिए करीब 50,000 रूपये देने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी गई है और आने वाले समय में अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इसे शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर कार्ड में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिले इसके लिए रिपोर्ट मंगवाई गई है।
रोबोट है जो एम्स दिल्ली में लगा है उसको आईजीएमसी शिमला, नेर चौक मंडी और हमीरपुर में लगाया जाएगा और टांडा में इसकी शुरुआत हो चुकी है 5 मेडिकल कॉलेज। इससे एक तो ऑपरेशन बहुत सही होता है और अभी पूरा ऑपरेशन मैंने देखा तो इस रोबोटिक सर्जरी से उत्तर भारत में ये पहले ऐसा सरकारी संस्थान होंगे पूरे प्रदेश में जहां तकरीबन 5 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा की फार फ्लंग के जो एरिए हैं, चाहे वो चंबा मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो नाहन मेडिकल कॉलेज है, और जो बड़े हॉस्पिटल है जहाँ मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, वहाँ कुल्लू का है, वहाँ भी रोबोटिक सर्जरी की हम शुरुआत करने की दिशा में विचार कर रहे हैं।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया नीति 2025 का उद्देश्य भारत में मजबूत, समावेशी और प्रदर्शन उन्मुख खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। आज लोकसभा में सांसद सुरेश कश्यप के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में कुल 18 खेलो इंडिया केंद्र संचालित किए जा रहे हैं जहां करीब 280 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और खेलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। सिरमौर जिला में गर्मियों के मौसम के दौरान वनों में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नाहन के डीएफओ अवनी भूषण राय ने बताया कि फायर सीजन विभाग के सामने बड़ी चुनौती रहता है जिसे देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टियों पर 1 अप्रैल से 15 जून तक प्रतिबंध रहेगा। अवनी भूषण राय ने फायर सीजन के दौरान लोगों से भी सहयोग की अपील की है।
समर सीजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बड़ी चुनौती रहती है जो फॉरेस्ट फायर से जूझना, और उसके विषय में हमने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं ऑलरेडी। अगर हम नाहन वन मंडल की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर के फायर लाइन का मेंटेनेंस कर दिया है ऑलरेडी और लगभग 400 हेक्टेयर में कंट्रोल बर्निंग कर दी है। इसके अलावा फ्रंटलाइन स्टाफ रहेगा जो एक्चुअली फॉरेस्ट फायर से जूझता है, उसके लिए हमने सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स मंगाए हुए हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि ये खांसियों में आग ना लगाएं। इसके अलावा अगर उनको आग की कहीं भी सूचना मिले तो तुरंत वहां के लोकल गार्ड को बताएं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।